ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। राजयोग शिविर के प्रातःकालीन सत्र में कल आप सभी ने आत्मा की वास्तविकता को देखा, परंतु योग अर्थात जहां आत्मा का संबंध उस पिता परमात्मा के साथ हो, और ये योग की अनुभूति करने के लिए जिस तरह आत्मा का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही पिता परमात्मा का यथार्थ ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। जहां तक आत्मा का विषय आता है, एक ही मान्यता होती है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है, वहां आज दुनिया के अंदर अनेक मतमतांतर, अनेक विचारधारा बन गई है। ईश्वर को लेकर के कोई स्पष्टता किसी के पास नहीं, और इसीलिए शायद मनुष्य की ये शिकायत बनी रहती है कि ईश्वर में मन लगता नहीं है। सोचते हैं कि कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर प्रॉब्लम है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा तूफानी है, घोड़ा है। वास्तव में मन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किससे लगाना है यही पता ना हो तो मन कहां लगेगा। तो इसीलिए जो है ईश्वर की वास्तविकता को जानना समझना भी जरूरी है। नहीं तो जैसे आज कहा जाता कि जितने दिमाग उतने विचार, जितने मुख उतनी बातें ईश्वर को लेकर के है। एक बार मेरा कहीं जाना हुआ था, एक बहन मुझे मिली और कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करते कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान है। वो बच्चा कहता है भगवान तो एक होना चाहिए, अगर ये सारे भगवान है तो इन सब का हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सारे भगवानों का हेड कौन है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई त्योहार होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद आई फील आई एम वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि मेरा मन तो लगता ही नहीं, इतना कंफ्यूज रहता है किस में लगाऊं, इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं, किस में लगाऊं। उससे तो मैं चर्च में ना जाऊं जहां एक गॉड है तो मन तो लगता है। ये देख करके वो मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है क्योंकि मैं उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती हूं। लेकिन आज ये उस मां का प्रॉब्लम नहीं है, आज ये कंफ्यूजन कई लोगों के मन में है कि आखिर ईश्वर कौन है। एक बार हमने कार्टून देखा और उस कार्टून में एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता हैं सब भगवान है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, व्हाट इज ट्रूथ? क्योंकि ये सारे ओपिनियंस एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही थी। क्या नेचर को भगवान कहे या आत्मा को कहे? क्या ब्रह्म को कहे या कण कण में व्यापक है कहे? निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है? यह सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहेंगे? सत्य किसको कहेंगे? वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक ने कहा, पैर पकड़ा तो कहा हाथी खंभे जैसा है, दूसरे ने पीठ पकड़ी तो कहा हाथी दीवार जैसा है, तीसरे ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा है, चौथे ने सुंड पकड़ी तो कहा सांप जैसा है, और पांचवे ने कान पकड़ा तो कहा हाथी सूप जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था? क्या ये पांचों ही सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे? क्या कहेंगे? सत्य कुछ और है। यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, आपको जाकर उनको बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये वन बाय वन जाते हैं। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाता, कहता है हाथी जो है ना एक दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है कि हाथी रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है हाथी एकदम लचीला सांप जैसा है, और पांचवा जाकर कहता है कि हाथी जो है सूप जैसा, पंखे जैसा है। पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि आखिर हाथी कैसा है? हर कोई आता है अलग बात कहता है, आखिर ये प्राणी है कैसा, लेकिन फिर भी विश्वास कर लेता है कि भाई ये पांच ने तो महसूस किया ना, सही बोल रहे होंगे, होगा कोई ऐसा प्राणी विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, आपने जो समझा वो उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। अब सातवां सूरदास जिसका आईक्यू लेवल हाई था, छठे सूरदास की ये बात सुनने के बाद क्या कहेगा? कहता है, अरे देख भाई, कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड हाउ कैन यू बिलीव दिस? तो छठा सूरदास क्या कहता है, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, होगा तभी तो बोला ना, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। तो सातवां सूरदास क्या कहता है, आई कांट बिलीव दिस, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर के कुछ गुणों को महसूस किया और महसूस करके उन्होंने मनुष्य को सुनाया अपनी महसूसता। मनुष्य ने विश्वास किया कि ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी हो सकता है, होगा कोई ऐसा, किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने व्यक्तियों में कुछ महसूस किया कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया कहा कण कण में है, सर्वव्यापी है, किसी ने कुछ इष्ट देवताओं से प्राप्ति कर ली तो कहा यही भगवान है। और ये जो बात उन्होंने मनुष्य को की, मनुष्य ने विश्वास किया, ऋषि मुनियों ने कहा झूठ थोड़ी हो सकता है। अब वो मनुष्य आज की जेनरेशन के लोगों को समझाना चाहता है ये सब भगवान है। आज की जेनरेशन का व्यक्ति जिसका आईक्यू लेवल हाई है क्या कहता है, हाउ कैन यू बिलीव दिस, इतने सारे भगवान कैसे हो सकता है, भगवान तो एक होना चाहिए। तो मनुष्य क्या कहता है, अरे ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों की बातें झूठ थोड़ी हो सकती है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। तो आज की जेनरेशन का व्यक्ति क्या कहेगा, आई डोंट बिलीव दिस, मैं नहीं मान सकता। एक बात कहो, और इसलिए धीरे धीरे मनुष्य का विश्वास ईश्वर से कम होता जा रहा है, क्योंकि सत्य परिचय किसी ने आज तक दिया ही नहीं। आखिर वो सत्य क्या है? ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कहा इसलिए आपको मान लेना है, नहीं, हम आपको और एक ओपिनियन नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ओपिनियन है, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। और ये कसौटी है पांच बातें, ईश्वर किसको कहा जाता है। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाएगा जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमेश्वर। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं, सर्वोच्च सत्ता है। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वपरे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, जिसने जन्म लिया, देह लिया तो देह और देह के संबंध है, जिसने देह लिया उसने कर्म किया और कर्म किया तो फल भोगना पड़ता है, तो जो कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते हैं उसको परमात्मा नहीं कह सकते। और कर्म करना माना या तो पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में हम आते हैं वो नहीं आता है, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते, वो उससे भी ऊपर है। तो जो सभी चक्रों से ऊपर है उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, इज ऑल नॉलेजफुल, उसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान है, जो मनुष्य को भी तीसरा नेत्र, ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिमूर्ति है, तो ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज, अनंत महिमा है जिसकी, जिसके लिए कहा जाता सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? जब हम कहते हैं नेचर इज गॉड, क्या नेचर के साथ ये पांचों बातें लगेगी? इज नेचर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल? क्या कहेंगे? क्या नेचर को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? करेंगे नहीं। क्या नेचर को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, रचना है कहना सत्य है, तो इसका मतलब प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, सत्य तो नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, क्या आत्मा को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। एक तरफ तो मंदिर में जाकर हम गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, और दूसरी तरफ हम कहते आत्मा सो परमात्मा। आखिर सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? वो परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये कहना सही है? ये हम ही परमात्मा है ये कहना सही है? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा सो परमात्मा कहना ठीक है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है? संतान है कहना ठीक है? तो इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। अगेन क्लियर? तीसरी बात, देखो मनुष्य जैसा कर्म करता है ना वैसा टाइटल मिलता है। पापात्मा अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं नहीं आता है, परमात्मा सिंगुलर में ही आता है, प्लूरल में नहीं आता है। गॉड इज वन, और यह सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा एक भी नहीं है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान परमात्मा नहीं कहा, देव आत्मा, दिव्य आत्मा को कहेंगे देव आत्मा, ये सब आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं कहेंगे उनको। कई बार कई लोग क्या एग्जाम्पल देते हैं, अरे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे ही एक बड़ा परमात्मा है और छोटे छोटे टुकड़े होकर के आत्माएं संसार में आई और अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। ये कहां तक सत्य है? सबसे पहली बात, आत्मा के लिए यही कहा जाता है आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर, जर्जर भी नहीं होती, अमर, मरती भी नहीं है, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है, इटर्नल, विच इज देयर फॉर एवर। अगर परमात्मा में मिल जाए तो उसका अस्तित्व खत्म, तो इसीलिए वो मिल भी नहीं सकती है, उसका अपना इटर्नल एग्जिस्टेंस है। तो सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में समा सकता है। आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, एनर्जी है, और एनर्जी के लिए यही कहा जाता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एग्जाम्पल अगर देवे तो बराबर का तो देवे, मैटर की कंपैरिजन एनर्जी के साथ कैसे कर सकते हैं? लेकिन आज तक जब लोग ये एग्जाम्पल देते हैं ना तो हम सोचते नहीं है। फिर क्या कहते हैं, जैसे पुत्र पिता का अंश है ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश है, अगेन इट इज मैटर, ये शरीर, शरीर हो सकता है अंश, उसकी कंपैरिजन आत्मा के साथ नहीं की जा सकती है। आत्मा का इटर्नल एग्जिस्टेंस है, इसलिए आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। राइट? एक्सेप्टेड? आगे बढ़े। क्लियर? तीसरी बात, जब कहते ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? मनुष्य अज्ञानता के कारण दो दो बातें करता रहा। एक तरफ कहा ब्रह्म ईश्वर है, तो दूसरी ओर कहता है पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? पार ब्रह्म रहे, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है। जिस तरह एक है मकान, एक है मकान मालिक। मकान मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला मकान मालिक है। ऐसे ही ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है, ये कहना ठीक है। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, सब में व्यापक है, जहां देखूं वहां तू ही तू है, ये कहां तक सत्य है? कण कण में भगवान सत्य है? आपका विवेक इस बात को मानता है कि कण कण में ईश्वर है? क्या कहेंगे? कण कण में भगवान माना, कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है, क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? है? अरे ऊंचे से ऊंची हस्ती, और कहां हमने अज्ञानता के कारण कह दिया? आज कोई हमें कहे कि फलाना व्यक्ति जानवर जैसा है तो भी हमें इंसल्ट महसूस होता है, क्या यह भगवान का अपमान नहीं है कि ऊंचे से ऊंची हस्ती को हमने कह दिया कण कण में व्यापक है? तब मनुष्य क्या कहता है? नहीं, सभी प्राणी मात्र में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अच्छा, सब में अगर आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो, एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, दोनों में परमात्मा विराजमान है, तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त अंदर बैठा परमात्मा क्या कर रहा था? क्या परमात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? आज घर में माता पिता बैठे हो और बच्चे आपस में खेल रहे हो, और मान लो कि किसी बात पर झगड़ा हो जाए और बच्चे आपस में मारपीट करने लगे, माता पिता सामने बैठे हैं, देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने, या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। एक माता पिता भी अपने बच्चे को लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, क्या वो बच्चों को आपस में लड़ता हुआ देख सकता है और कुछ नहीं कहता है? ऐसा हो सकता है? देखो, जब गीता के चौथे अध्याय में ये बात आई, यदा यदा ही धर्मस्य, माना जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, भगवान वाच मैं आता हूं। नहीं होगा तभी तो आएगा। अगर यही है तो कौन आएगा? अगर ईश्वर यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? आज कोई हमें कोई बात पूछता है या बताता है, हमें मालूम नहीं होता है, तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते, यही कहते हैं ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, हु इज दिस ऊपर वाला? फिर तो कण कण में कैसे व्यापक हो सकता? अनजानेपन में भी ये नहीं निकला कि नीचे वाला जाने, ये सब में विराजमान है, वो जाने। यही कहा ऊपर वाला जाने, तो ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है। आज देखो प्रकृति में भी ये गुण है कि एक लोहे को आग में रख दो तो थोड़ी देर के बाद लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा, संग का रंग। आज अगर ईश्वर गुणों में अनंत है और वो सर्वव्यापी है तो उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें नहीं लगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? लेकिन तब बात आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आई, तो क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्रों में जिस भाव से लिखी गई है वो बात हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। तो शास्त्रों में किस भाव से लिखा गया है? जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है घुटना करना जब सीखता है, सब घर से बाहर जाते हैं तो उसको लगता है मैं भी जाऊं, वो भी घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है। और उस समय मां को बहुत ध्यान देना पड़ता है कहीं बच्चा बाहर ना निकल जाए, रास्ते पर ना चला जाए। इसलिए वो मां क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी देख बाहर गया ना, वो कुत्ता उठा के ले जाएगा, एक डर बिठाया, ताकि अगर मां का ध्यान न भी हो तो भी बच्चा बाहर न चला जाए। जैसे ही बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, कुत्ता या गाय को देखता है, क्या करेगा, वापस अंदर आ जाता है और खुश होता है, व्यक्त करता है आई एम सेफ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाहर गया ही नहीं, ये व्यक्त करता है। लेकिन वही बच्चा 10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी मां पर, मेरी मां कैसी है, भोली है, उसको इतना भी नहीं पता कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या, और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में लाएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया उसको। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब कलयुग आरंभ हुआ तो ऋषि मुनियों ने देखा कि कलयुग का प्रभाव क्या हो सकता है, मनुष्य बहुत पाप कर्म कर सकता है, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है, उसकी आंखें हजार है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे कि भगवान मुझे देख रहा है और ये पाप कर्म न करे। इस शुभ भावना के साथ ये बात शास्त्रों में लिखी गई थी। लेकिन कलयुग के अंदर मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए जब उसको कोई कहता है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, भगवान देखता क्यों है, वो तो सर्वशक्तिमान है, मुझे छुड़ा सकता है, वो देखता क्यों है, वो भय भी नहीं रहा और पाप करता ही चला गया। आज से 300-400 साल पहले भी भारत के अंदर ये संस्कृति थी कि अगर कोई किसी को पाप करने की प्रेरणा भी देता था तो भी मनुष्य क्या कहता था, अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था 300-400 साल पहले। लेकिन आज वही मनुष्य जब पाप करता है और लोग उसको स्मृति दिलाते हैं कि अरे भगवान देख रहा है क्यों इतना पाप करता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, और पाप करता ही चला गया। वो डर भी नहीं रहा, डर बिठाने के लिए ऋषि मुनियों ने ये बात शास्त्र में लिखी थी ताकि मनुष्य पाप कर्म कम करे, है ना। आज मनुष्य इतना पाप करता जा रहा है, कदम कदम पर पाप कर रहा है और उसको भय भी नहीं है, और फिर कहता है भगवान तुझे देख रहा है, भगवान उसको भी तो देख रहा है, लेकिन डर कहां है और किसके लिए पाप करता है। कभी कभी ये विचार आता है, वो वाल्मीकि जी वाली बात याद आती है कि वाल्मीकि जी बड़े लुटेरे थे, जब लोगों को मारते थे, पाप करते थे। एक बार एक साधु को पकड़ लिया, साधु ने उसको पूछा किसके लिए इतना पाप करता है तू, कह रहे बाल बच्चे वाला हूं, मेरे परिवार को पालना है मुझे, उसके लिए करना पड़ता है। वो साधु ने कहा एक बार अपने परिवार वाले से पूछ ले कि ये पाप का फल जब भोगने का समय आएगा तभी भी वो भागीदार होंगे। कहा क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। कहा पूछ के तो आ। कहा ठीक है, आप यहीं रहना, मैं जाकर के आता हूं। गया घर, अपने माता पिता के पास बैठा और माता पिता से कहता है कि मैं इतना जो पाप कर रहा हूं, सबका पेट भरने के लिए कर रहा हूं, लेकिन जब फल भोगने का समय आएगा तो आप मेरे पाप कर्म के फल में भी भागीदार बनेंगे। तो माता पिता ने क्या कहा, अरे बेटा हम तो जल्दी चले जाएंगे, हम कहां होंगे, तुम कहां होगा, हमें पता ही नहीं तू कहां फल भोग रहा होगा, हम कैसे तेरा पाप कर्म का फल भोगेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं तुम कहां होगा और हम तो कहां चले जाएंगे। जवाब मिल गया। पत्नी के पास गया, पत्नी को पूछा कि मेरे पाप कर्म का फल भोगने का समय जब आएगा तब भागीदार बनेगी, तो कहा अरे शरीर छोड़ करके आप जाएंगे जहां फल भोगने का समय होगा, आप कहां होगे, मैं कहां होंगी, मैं कैसे आपका फल भोग सकती हूं। जवाब मिल गया। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा अरे पिताजी आप तो जल्दी चले जाएंगे, फिर आप कहां होंगे, फल भोग रहे होंगे, हमें क्या मालूम, हम कैसे आपके पाप के अंदर भागीदार बन सकते हैं। सबका जवाब मिलने के बाद ही तुम वाल्मीकि जी को वैराग्य आया और तब से जीवन परिवर्तन हो गया। आज मनुष्य को पूछो इतना पाप क्यों कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, अरे बाल बच्चों का पेट पालने के लिए। अरे उन बाल बच्चों से पूछो तो सही कि आपके पाप के फल भोगने का जब समय आएगा तो भागीदार बनेंगे, जब बनने वाले ही नहीं है तो किसके लिए पाप कर रहे हैं। और पाप कर्म करके जो कमाई इकट्ठी की है शायद आप भोग भी नहीं पाओगे, और फल तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई भागीदार नहीं बनने वाला है। तो क्या ये पाप करना समझदारी है किसी और को पोषने के लिए, जो एक जन्म का साथी बना है, एक जन्म के लिए आपके साथ आया है, उसके लिए इतना पाप करके क्यों फल भोगने के समय इतना दुख दर्द भोगना चाहते हैं, क्या यही समझदारी है। तो इसलिए कण कण में भगवान है ये कहने के इसलिए कहा गया था ताकि मनुष्य पाप कर्म कम करे, लेकिन वो बात भूल गई और बस ये चला आया ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में है, जहां देखो वहां तू ही तू है, राधे ही राधे हैं, राम ही राम है, सब जगह है। सोचने की बात है। क्लियर हो गई बात? किसी को है कोई प्रश्न? क्लियर हो गई? पांचवी बात, जब कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं, हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात दिखाना है तो दिखा सकता है नहीं दिखा सकता है? कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, और शांत प्रकृति दिखाना है तो जैसे हवा चल ही नहीं रही है। बहुत सुंदर चित्र बना करके पहाड़ नदी सब बना करके पूरा प्रतिबिंब उस नदी के अंदर दिखा कि जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एकदम शांत प्रकृति है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो क्या स्वयं ईश्वर नाम रूप आकार बिना हो सकता है? उसका भी अपना नाम रूप आकार है, लेकिन हां मनुष्य सदृश नहीं है, इसलिए कहा मनुष्य सदृश नहीं तो निराकार है। लेकिन उसका अपना आकार तो है, कौन सा है वो? तो जिस तरह एक मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज, एनर्जी है, स्पार्क है, पॉइंट है, लाइट है। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम लाइट है, सुप्रीम स्पार्क है। जिसकी पूजा, अभी उसके साथ पांचों बातें लगती है, तो जिसकी पूजा हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की, ज्योतिर्लिंगम, जो उस ज्योति का स्वरूप है, आकृति है, लिंग माना आकृति, जिस तरह ग्रामर में स्त्री लिंग पुलिंग कहते हैं, स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति, ठीक इसी तरह ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित कर सकता है। लेकिन उस पत्थर की पूजा नहीं कर रहा है, भावना अर्पित कर रहा है उस ज्योति स्वरूप को। इसीलिए अनेक नाम दिए, द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी भारत में बहुत महान तीर्थ स्थान है और सबसे एनर्जी पुंज के स्थान है ना, एनर्जी पुंज के स्थान है। इसीलिए शिव की महिमा गाई गई है, उसको कहा गया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना शांति, कहां अशांति होंगी तो कहेंगे बोलो शिव, यानी शांति करो। कोई छोटे बच्चे को देखेंगे तो कहेंगे शिव स्वरूप है, यानी बच्चा जैसे पवित्र है तो परमात्मा परम पवित्र है। तो शिव के कई मीनिंग्स है, लेकिन गुणवाचक वो नाम दिया गया है। आज मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं है, किसी का नाम होगा शांति भाई लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, किसी का नाम होगा अमीर चंद लेकिन होगा फकीर चंद, है ना? किसी का नाम होगा हसमुख बहन, लेकिन कभी हंसते ही नहीं होंगे। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन आजकल तो मनुष्य ने देवताओं के नाम भी अपने ऊपर रख दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, गणेश जी, है ना? देवताओं के नाम अपने ऊपर रख दिए, भले वो क्वालिटी है या नहीं है, और उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो डबल नाम रख दिया, राधे कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, डबल डबल चाहिए। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम होगा, शिवा रामा कृष्णा, तीन इंजन लगा दिए, है ना? तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है, है ना? और इसीलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगम जो भी है, या जितने भी शिव के मंदिर है, भारत में कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। देवों का भी देव महादेव उसको कहा। तब कहा कि हर गांव में भी महादेव का मंदिर जरूर होगा। और जब भी शिव का मंदिर स्थापन होता है और उसमें जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो लिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है। भक्ति में भी इतना सुंदर यादगार है कि एक परमात्मा ही अवतरित होते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति को द्वार से लाएंगे, लेकिन शिवलिंग को ऊपर से ही उतारा जाता है, तब यथार्थ रूप में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो भक्ति में भी इतना सुंदर यादगार है कि वो अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, किसी मां के गर्भ से ही संसार में नहीं आते हैं। और इसीलिए देवों का देव तो है, देवियों का देव भी है। श्री कृष्ण के आराध्य कौन थे? शिव। श्री राम के आराध्य कौन थे? रामेश्वरम में श्री राम ने भी शिव की पूजा की थी। वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर में श्री कृष्ण ने भी उसकी पूजा की। तो जितनी भी देवियां हैं, ये देवियां कौन है? कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं, इसलिए ये शक्तियों का भी जन्म नहीं दिखाते हैं, उत्पत्ति है। कहां से हुई? शिव से उत्पत्ति हुई। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं अज्ञानता के कारण, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां नाम अलग है शिव और शंकर, जहां स्वरूप अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां ऑक्यूपेशन अलग है, शिव को कहा सदा कल्याण करने वाले भोलेनाथ, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकते हैं? जो शिव शंकर भोलेनाथ कह दिया, शंकर तो भोला है ही नहीं, वो तो विनाश करने वाला है, प्रलय करने वाला है, तो वो भोला कैसे हो गया? तो इसीलिए कहा कि शंकर को भी हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया है ना, किसकी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न दिखाया, कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान किया, किसका ध्यान किया? कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, वहां बैठकर शंकर ने भी शिव का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इतने सालों तपस्या करके उस शक्ति को हासिल किया तब अपना कार्य कर सके कि आंख खोलते महाविनाश हो सकता है, इसलिए उसको तपस्वी रूप में दिखाया। कई चित्र आपने देखे होंगे शंकर के पूरा गृहस्थ जीवन के अंदर, मां पार्वती है, दो बच्चे हैं, गणेश जी कार्तिकेय, गणेश जी की भी दो पत्नियां हैं, उसके भी दो बच्चे हैं, तो पूरा गृहस्थ जीवन में दिखाया और सब मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए शिव और शंकर एक नहीं, अलग है। शंकर ने भी उसकी पूजा की, उसका ध्यान किया, मेडिटेशन किया। तो जितने भी देवी देवताएं हैं उन सभी देवी देवताओं के आराध्य कौन? शिव है। ये तो हुई भारत वालों की बात, है ना। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, रोज जाकर राजा के द्वार पर भीख मांगता था। और राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है, कुछ न कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहां से है, अगर उस स्रोत को, सोर्स को मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ना पड़े, जरूर सुबह सुबह इस स्रोत से प्राप्त करता होगा। तो एक दिन भिखारी 6 बजे में पहुंच गया देखने के लिए राजा कहां से प्राप्त करता है जो सबको देता जाता है। तो द्वारपाल को जाकर पूछा, हे द्वारपाल तुम मुझे बताओ इस समय राजा कहां होंगे और क्या करते होंगे। तो द्वारपाल ने कहा, राजा तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। कहा मैं वहां जा सकता हूं? कहा क्यों नहीं, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मैं पीछे ही बैठूंगा। पीछे जाकर बैठ गया। उसी थोड़ी देर के बाद राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी झोली भर तू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने यह बात सुनी उठ करके बाहर आ गया। द्वारपाल ने कहा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, बात क्या थी? कहा रे आज पता चला ये राजा भी तो भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, उनकी झोली भगवान भरते हैं तो हमारी झोली क्यों नहीं भर सकते। चलते चलते भिखारी के मन में विचार चला, राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी, लेकिन हनुमान जी के कितने सारे भक्त होंगे, सबको थोड़ा थोड़ा दिया होगा, राजा को भी दिया होगा एक हिस्सा, लेकिन हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। तो सोचा श्री राम के भी बहुत सारे भक्त होंगे, सबको हिस्सा मिला होगा, हनुमान जी को एक हिस्सा मिला होगा, वो हिस्से में से हनुमान जी ने राजा को दिया, राजा ने हमको दिया। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो भोलेनाथ को याद करते थे। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त, एक हिस्सा श्री राम को मिला, श्री राम के भी इतने सारे भक्त, एक हिस्सा हनुमान जी को मिला, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, एक हिस्सा राजा को मिला, राजा को भी तो इतने सारे को देना होता है, एक हिस्सा मेरे पास आया। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब ये वाया वाया में कम हो रहा है, क्यों नहीं मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही। मेरा भाव तो आप समझ ही गए होंगे, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटके हैं, क्या करेंगे? हाँ डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो ही भारत वालों की बात, भारत से बाहर जाए। इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है। परंतु मक्का जब हज यात्रा पर जाते हैं, वहां काबा का पवित्र पत्थर है, निराकार है। और इस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है कि जब इस्लाम धर्म में ईश्वर के मत को लेकर के मतभेद हो गया, तब उस समय खूब मारपीट होने लगी थी, लड़ाई झगड़ा होने लगा था। उस समय एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पत्थर गिरा था जिसकी स्थापना मक्का के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब ने की। और तब से लेकर के ये मान्यता बनी कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसलिए हर साल उनकी हज यात्रा निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाते हैं क्या करते हैं, वहां जाने के बाद अपने पापों के प्रायश्चित करते हैं। एक पिल्लर है जिसको वो शैतान कहते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, सात बार उसकी परिक्रमा करते हैं। सात बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और अंत में एक वाक्य जरूर कहेंगे जिस वाक्य के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो वाक्य है हे परवरदिगार, ईश्वर को कहते हैं हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना, नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? क्या कहेंगे? एक ही तो है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने हमेशा उसको कहा एक नूर, उसकी महिमा में गाया एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत, बहुत सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। अजोनी किसी योनियों में नहीं आता है, जो उसको कहा एक नूर। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए तो महात्मा बुद्ध ने कभी किसी को मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो भी ध्यान में बैठा है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसका ध्यान किया उसने? आज भी जापान चले जाओ तो जो शिंतोनिज्म सेक्ट है, वो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं, जिसको वो कहते चिंकुन शेकी। चिंकुन शेकी का मतलब है शांति का दाता, और उसके सामने बैठ करके मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं हमारा मन शांत हो जाता है, जो शांति का दाता है। तो निराकार ज्योतिर्लिंगम का ही स्वरूप। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? कहा सिद्ध शिला का। सिद्ध शिला माना जो सर्वश्रेष्ठ निराकार है, उसी को उसी का ध्यान करते हैं, उसको परमात्मा माना। महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, क्योंकि वो भी ध्यान मुद्रा में है, वो भी उस निराकार का ध्यान कर रहे हैं। और आगे जाएं पारसी धर्म में, कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे। आज भी उनके मंदिर को कहा जाता द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो किसी ने लाइट कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने अखंड ज्योति कहा, किसी ने निराकार कहा, है तो उस एक की ओर इशारा। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? एक जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम या शिव कहा, वही सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, जो सभी चक्रों से पर है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, जो सभी चक्र से ऊपर है लेकिन फिर भी सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, और ये तीन लकीर माना जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों को जानने वाला। बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला त्रिनेत्री। तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा जो सृजन कराते, विष्णु द्वारा जो पालना कराते, और शंकर द्वारा महाविनाश कराते, ये तीन कार्य जो है, सृजन, पालना और महाविनाश विसर्जन, ये तीन देवताओं के द्वारा ही कराते हैं। करण करावन हार वही है, कराने वाला वही है, लेकिन खुद नहीं करता है। इसलिए ये तीन मूर्तियों को भी क्रिएट किया, रचा, और ब्रह्मा के द्वारा सृजन कराया। किसने? परमात्मा ने। विष्णु के द्वारा पालना कराई, और शंकर के द्वारा महाविनाश कराया। किसने? वो सुप्रीम अथॉरिटी ने। तो ये तीन की महिमा भी उसके साथ ही जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवी बात, जो सर्व गुणों में अनंत है, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो जितने भी मंदिरों के नाम है, सब गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, और शिव के मंदिर के नाम के एंडिंग में या नाथ होगा या ईश्वर होगा। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर। अर्थात जो सर्व का नाथ और सर्व का ईश्वर एक ही है। तो इसीलिए सर्व का नाथ और ईश्वर वो एक ही परमात्मा है। तो पांचों बातें जो कसौटी थी वो एक के साथ ही लगती है, सर्व धर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान, एक ही परमेश्वर है। तो यह था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी का परिचय लेते हैं ना, तो पांच बातें पूछी जाती है। आपका नाम क्या है, फोटो आइडेंटिटी चाहिए, वही है या नहीं, है ना। तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन चाहिए। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो ईश्वर का नाम जिसको कहा सदाशिव, जो सदा कल्याण करने वाले हैं, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर का मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। जब सबने उसकी तरफ इशारा किया, देवी देवताओं ने उसकी तरफ इशारा किया, उसकी पूजा की, सभी दिव्य आत्माओं ने, धर्मात्माओं ने उसके तरफ इशारा किया, फिर हम रास्ता भूले कहां से और क्यों भूले और इतना भटक रहे हैं अनेक मतांतरों में। तो अब तो भटकना बंद होगा कि अभी भी भटकेंगे? अब एक को पकड़ो तो कम से कम प्राप्ति तो हो। 10 जगह भटकने से प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए एक के साथ जब हमारा योग, बुद्धि का योग लग जाता, मन एकाग्र हो जाता है, तो सहजता से सर्व प्राप्ति होने लगती है। तो इसलिए नाम एक ही है, भले नाम अलग अलग हर एक धर्म में लिया, लेकिन उसी एक की ओर है। स्वरूप एक ही दिखाया, लाइट कहो, नूर कहो, प्रकाश कहो, अखंड ज्योति कहो, निराकार कहो, स्वरूप एक ही है, आइडेंटिटी। क्वालिफिकेशन पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर ऊपर वाला है, तो यहां नहीं है, तभी इतना अधर्म बढ़ा और अधर्म के समय पर आने का वायदा दिया है। और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, अधर्म फैल जाता है, तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की, सनातन धर्म की पुनः स्थापना कराना, ये ईश्वर का ही काम है। तो ये पांचों बातों में पूर्ण परिचय आ गया, ठीक है। अभी तो मन लगेगा या नहीं लगेगा, कहां लगाना मालूम पड़ा। अच्छा, आगे चल करके आपके घर में कोई आपसे पूछे ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो अभी तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? बता सकेंगे? कोई प्रश्न? अच्छा, तो 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं, उस परमात्मा में मन को एकाग्र करते हैं।